જયપુરમાં પૂજ્ય ભાઈશ્રીની તત્વ ચર્ચા.
તરાગ રે જ્ઞાન નમો તાહિ જાતે ભયે અરહંતા ધીમહ. પ્રશ્ન પ્રારંભ હોતે હૈ. આપને જો 271માં કલશ ચલાવા હૈ ઉસકે સંદર્ભ મેં સેંકડો પ્રશ્ન આ ચુકે. અગર આપ એક મહિને રહે તો ભી વો પૂરે નહીં હોવે. પ્રશ્નકર્તા ભાઈઓ સે નિવેદન હૈ કે જીતને આ ગયે હૈ ઉન પ્રશ્નો કોઈ ધ્યાન સે સુને તો ઉનમે ઉનકા ઉત્તર આ જાયેગા. અભી કૃપયા નઈ ચિઠ્ઠી ના ભેજે. પહેલા પ્રશ્ન ઇસ પ્રકાર હૈ. જ્ઞાન ગે જ્ઞાતા રૂપ તીનો ભાવો સહિત વસ્તુ હૈ તો એ વ્યવહાર ને કા વિષય હૈ યા નિશ્ચય ને કા વિષય?
જ્ઞાન પ્રધાન નિશ્ચય હૈ, દ્રષ્ટિ પ્રધાન નિશ્ચય નહીં હૈ. દ્રષ્ટિ પ્રધાન નિશ્ચય મેં તો પરિણામ માત્ર સે આત્મા ભીન હૈ. એસા જબ દ્રષ્ટિ કા વિષય દ્રષ્ટિ મેં આવે તબ ઉપયોગ અભિમુખ હો જાતા હૈ. તો અભિમુખ હોને સે આત્મા કા જબ અનુભવ હોતા હૈ તબ મેં હી જ્ઞાતા, મેં હી જ્ઞાન ઓર મેં હી જ્ઞેય, એસા અભેદ રૂપ અનુભવ હો જાતા હૈ. ઉસકા નામ જ્ઞેય હૈ. ધ્યેય પૂર્વક અનુભવ કે કાળ મેં જ્ઞેય હોતા હી હૈ. અર્થાત જ્ઞાતા જ્ઞાન ને જ્ઞેય જો અભેદ હૈ વો દ્રષ્ટિ કા વિષય નહીં હૈ. મગર દ્રષ્ટિ પૂર્વક જ્ઞાન પ્રગટ હોતા હૈ, સમ્યક જ્ઞાન, ઉસમેં અભેદ એસા અનુભૂતિ હોતી હૈ. જ્ઞાન જ્ઞાતા ને જ્ઞેય કી, જ્ઞાન જ્ઞાતા ધ્યેય કી એકતા હો જાતી હૈ.
જ્ઞાન પ્રધાન નિશ્ચય કા વિષય હૈ, યે હુઆ
જ્ઞાન પ્રધાન નિશ્ચય.
જ્ઞાન નિશ્ચય કા વિષય,
અથવા એવું જ્ઞેય બન ગયા. આત્મા અનંત કાળ સે જ્ઞેય નહીં બના થા. વો જ્ઞેય કે અંદર ઉત્પાદ એ ધ્રુવતમ સબ ગુણ પર્યાય અદ્રયમ સજ આ જાતા હૈ, જ્ઞેય હૈ.
નિશ્ચય કે એસે દો ભી
ઉસમે બહોત આતા હૈ, નહીં લગા કર નહીં આતા હૈ, એસા નહીં હૈ, આતા હૈ. જૈસે પ્રવૃત્તિ અનુસાર મેં તો વહાં તક આયા કે રાગ આત્મા મેં હોતા હૈ, સુધરે કા વિષય હૈ. બોલો ક્યાં કરે? પર મેં નહીં હોતા હૈ, પર સે નહીં હોતા હૈ, એક જગ મેં હોતા હૈ. ઇસલિયે જ્ઞાન પ્રધાન કથન સે એસા શૈલી આતી હૈ. શ્રદ્ધા કા વિષય નહીં હૈ.
ત્રિકાલી જ્ઞાયક સ્વભાવ કા સ્વચતુષ્ટય ઓર પર્યાય સ્વભાવ કા સ્વચતુષ્ટય ક્યા ભિન્ન ભિન્ન હૈ?
દ્રવ્ય સ્વભાવ જો જ્ઞાયક હૈ ધ્રુવ
જી,
ઉસકા અંદર દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ઓર ભાવ, દ્રવ્ય કે અંદર ઓ ગુણ ભેદ ગુણ ગુણી કા ભેદ નહીં હૈ. ક્ષેત્ર ની અંદર પ્રદાશ ભેદ પ્રદેશ ભેદ નહીં હૈ. કાળ કી અપેક્ષા સે ભૂતકાળ વર્તમાન ઉત્તરીકાળ એસા ભેદ નહીં હૈ. ભાવ કી અપેક્ષા એ ગુણ ઓર ગુણ કે બીચ મેં ભેદ નહીં હૈ. એસા અભેદ સામાન્ય શુદ્ધ નહીં કા વિષય જો ઉપાધે ઓ જ્ઞાયક સ્વચતુષ્ટ કહા જાતા હૈ. ઓર પર્યાય સે સહિત આત્મા પરિણામી લો વો ભી સ્વચતુષ્ટ હોતા હૈ. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ને ભાવ પરિણામી આત્મા, પહેલા અપરિણામી કહા બાદ મેં આત્મા પરિણમતા હૈ વો ભી સ્વચતુષ્ટ હૈ. જૈસે કેવળી ભગવાન સ્વચતુષ્ટ પરિણમતા હૈ ને આનંદ જ્ઞાન આનંદ દર્શન હમ સુખ એસા હો જાતા હૈ.
પર્યાય કા ચતુષ્ટય ઓર દ્રવ્ય કા ચતુષ્ટય અલગ અલગ હૈ કે એક હી વસ્તુ મેં યે દોનો ચીજે હૈ?
દ્રવ્ય સામાન્ય હૈ ને પર્યાય વિશેષ હૈ. એક બીજા મેં ઇસકા અભાવ હૈ. દ્રવ્ય પર્યાય કી નાસ્તી ને પર્યાય મેં દ્રવ્ય કી નાસ્તી એસા હૈ. અસ્તિ નાસ્તી અને કામ
જી. નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ ઓર સવિકલ્પ પ્રમાણ કા સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કીજીએ.
નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ કા અર્થ તો એસા હૈ કે જબ ગાયક કી સન્મુખ આત્મા આતા હૈ ઓર અનુભવ કા કાળ હૈ તબ અંદર મેં આત્મા સ્વ હૈ ગાયક અને આનંદ આદિ પર હૈ, અથવા જ્ઞાન સ્વ હૈ અને આનંદ આદિ પર્યાય પર હૈ. ઓ સ્વ પર કો નિશ્ચય સે સ્વ પર પ્રકાશક સારા પ્રમાણ કા વિષય નિર્વિકલ્પ પ્રમાણ હો ગયા ઉસમેં. अने बार में आता है तो सविकल प्रमाण भी होता है। सविकल प्रमाण में भेद की अपेक्षा आती है, उसमें निर्विकल भेद अभेद होता है। अने प्रमाण ज्ञान में भी दो प्रकार है, एक अध्यात्म प्रमाण एक आगम प्रमाण। अध्यात्म प्रमाण में द्रव्य गुण पर्याय सब शुद्ध होती है, वो अध्यात्म प्रमाण का विषय है। और आगम प्रमाण में साधक को थोड़ा राग रहता है, वो भी प्रमाण का विषय में गर्वित हो जाता है। साधक को वितराग भाव भी है, थोड़ा राग भाव भी है, वो भी प्रमाण ज्ञान के अंदर आ जाता है, मगर आगम प्रमाण कहा जाता है जो प्रवर्तन सार की शैली।
अध्यात्म प्रमाण वो निर्विकल्प प्रमाण है और आगम प्रमाण वो सविकल्प प्रमाण है।
ऐसा नहीं। निर्विकल्प प्रमाण में तो ये सारा स्वचतुष्ट अभेद स्वपर प्रकाशक अंदर में एक जाति का प्रमाण, द्रव्य शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध। आगम प्रमाण में राग की पर्याय की योग्यता शामिल करके आगम प्रमाण कहा जाता है। थोड़ा कह रहे अभी वितराग नहीं हुआ ना, इसलिए
निर्विकल्प और सविकल्प ऐसे दो भेद किस आधार पर किए गए हैं?
निर्विकल्प यानी निर्विकल्प तो अंदर में गया तो निर्विकल्प, बाहर में आया तो सविकल्प प्रमाण।
एक और प्रश्न है कि निर्विकल्प स्वानुभूति मति ज्ञान में होती है कि श्रुत ज्ञान में होती है?
श्रुत ज्ञान में होती है।
मति ज्ञान में क्यों नहीं होती?
मति ज्ञान कमजोर है, बहुत बड़वान नहीं है। पहले मति विकल्प छूट जाता है, अनुभूति होती।
कल के प्रवचन में आया था कि लोक में जितने द्रव्य हैं वे मेरे गे और मैं उसका ज्ञायक, ऐसा नहीं जानना। यदि ऐसा सर्वथा मानेंगे तो सर्वज्ञता का जो लक्षण आगम में कहा है कि केवल भगवान लोकालोक को जानते हैं, तो ये कथन कैसे सिद्ध होगा?
ये कथन व्यवहार ने कहा है, अभी चलती है बात आत्मा का अनुभव कैसे हो। जो आत्मा ज्ञाता ने लोकालोक में राज्य ऐसा पक्ष में पड़ जाता है तो उपयोग प्रसन्नमुख हो जाता है। लोकालोक मेरा ज्ञान का ज्ञ ही नहीं है, मेरा आत्मा ही ज्ञ है, ऐसा करने से निश्चय का कथन है। निश्चय नहीं यानी सत्यार्थ कथन है, अनुभव के काल में ऐसा होता है, उससे ही अनुभव होता है। सौ पर दो को जानता है ऐसा नहीं, बाकी केवल भगवान लोकालोक को जानता है वो व्यवहार नहीं का कथन है। सर्वथा नहीं है, झूठ है, ऐसी बात नहीं है।
इसमें
उसका खुलासा भी आया था कि सौ पर प्रकाशक है तो भी अपनी स्व पर जो प्रतिभा से ऐसा ज्ञान की पर्याय जानने में आती है तो उसमें लोकालोक का ज्ञान आ जाता है। लोकालोक को जानता है, लोकालोक को नहीं जानता है, नहीं व्यवहार नहीं का कथन है।
आप फरमाते हैं कि केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, ये व्यवहार नहीं का कथन है।
हाँ, व्यवहार का अर्थ हाँ, दो प्रकार है इसमें, तन्मय नहीं है इसलिए व्यवहार,
हाँ जी,
और पर की अपेक्षा आती है इसलिए व्यवहार,
बराबर। और स्व को ही जानता है जब निर्विकल्प अनुभव के काल में, ये निश्चय नहीं का कथन है।
स्वास्थित निश्चय नहीं,
तो निश्चय ने सदमस्त के ऊपर यानी अनुभव करने वाले के ऊपर लागू हुआ और व्यवहार ने केवली भगवान के ऊपर लागू किया।
नहीं ऐसा नहीं है, अपने पे लागू होता है। देवगुरु शास्त्र को जानते हैं तो व्यवहार है, देवगुरु शास्त्र को जाने तो व्यवहार है, नहीं जानता ऐसा नहीं। व्यवहार नहीं से जाना जाता है, इसका अर्थ उसमें तन्मय होता नहीं है। दूसरी पर की अपेक्षा आया,
बराबर,
पर की अपेक्षा आया तो व्यवहार हो गया। स्वाश्रित निश्चय नहीं, पराश्रित व्यवहार नहीं, ऐसा पाठ है।
अनंत भगवान सर्वज्ञ है, ये बात तो निश्चय से ही रही ना। फिर
निश्चय से सर्वज्ञ है, व्यवहार से सर्वज्ञ नहीं है।
अभी तो फरमाया था कि वो लोकालोक को जानते हैं,
लोकालोक को जानते हैं वो व्यवहार है। अपने को जाने ने लोकालोक को जाने वो भी व्यवहार है, पर को जाने वो तो व्यवहार है ही,
हाँ जी।
मतलब केवड़ी भगवान अपने आत्मा को भी जाने, लोकालोक को जाने, उसका नाम भी व्यवहार है। प्रमाण लक्षण जिसका ऐसा व्यवहार हो गया हो, नियम सार के अंदर 159 गाथा में है,
हाँ जी,
159।
प्रवचन के संदर्भ में ही एक प्रश्न है, गेयों के आकार रूप होता हुआ ज्ञान, यह तो कथन मात्र है। ऐसा जो आज प्रकरण सुबह आया था, तो जब ये बात कथन मात्र है तो ये कथन किया क्यों जाता है? कथन मात्र कहा तो इसका कुछ मतलब तो होगा।
मतलब तो ऐसा है, उसका प्रतिभास होता है तो ज्ञाकार ज्ञान कहा जाता है, मगर सचमुच वो तो ज्ञानाकार है, वहां ले जाना है। ज्ञाकार ज्ञान का तिरोभाव करके सामान्य का आविर्भाव जब होता है तब अनुभव होता है। ज्ञाकार ज्ञान का आविर्भाव से अनुभव नहीं होता है, वो तो अज्ञान है। गे का संबंध वाला जो ज्ञान वो ज्ञाकार ज्ञान है, अनुभव के काल में वो तिरुभाव हो जाता है और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव प्रकट हो जाता है। ये जो गाथा है ने गुरुदेव की, ये अनुभव करने के लिए, अनुभव के बाद क्या होता है वो दूसरी बात है, अनुभव करने के लिए क्या है वो दूसरी बात है, वो अलग अलग है दो बात।
तो ऐसा समझना चाहिए कि आत्मा जानता तो है सबको, लेकिन अनुभव करने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि पर को नहीं जानता है, केवल अनुभव करने की बात हुई है तो, लेकिन जानता तो है ना पर को आत्मा।
पर जड़ित जाता है, पर को जानता नहीं है, पर लक्ष्य होता नहीं है ज्ञान का। ज्ञान का कभी केवड़ी भगवान का ही लक्ष्य लोकालोक पर नहीं है
जी,
अने शुद्ध केवड़ी है, शुद्ध ज्ञानी है, साधक है, उसका लक्ष्य राग पर नहीं है। राग जनित जाता है, जानता नहीं है, जनायलो प्रयोजनवान छे ऐसा लिखा है, जानेलो प्रयोजनवान, मगर वो जनाई जाए छे, सेज मां जनाई जाए छे लक्ष्य वगर। केवड़ी भगवान ना ज्ञान मां लोकालोक जनाई जाए छे, એનો અર્થ લોકાલક ને જાણે છે અને એના તરફ લક્ષ છે એમ નથી।
એ વાત હિન્દી ને સમજ,
ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નો અનુભવ એવો છે અનાદિ થી કે જાણે પર ને જાણવા માટે જયારે લક્ષ કરે ત્યારે જણાય, તો એ અનુભવ ને આગળ કરે છે કે કેવડી ભગવાન લોકાલોકો જાણતા હૈ, લોકાલોકો નહી જાણતા હૈ, લોકાલોક જણી જાતા હૈ।
आत्मा का अनुभव तो सम्यक दृष्टि को बहुत थोड़े समय के लिए होता है, तो बाकी के समय में वो बुद्धिपूर्वक क्या करना चाहिए?
वो वेद ज्ञान का विचार करना चाहिए बस। क्या करना चाहिए? वेद ज्ञान चलता ही है। समझ में आया प्रश्न क्या? कि निर्विकल ध्यान में तो ठीक है, पर सविकल्प दशा में आवे तो शुभ राग तो करे कि नहीं? साधक करता नहीं है, आता है, उसको जानता है, करने के बाद नहीं है। होता है साधक को राग होता है, पांच महाव्रत भी होता है, देश व्रत नीचे होता है, अविरत सम्यक दृष्टि को देवगुरु शास्त्र प्रत्यय का राग होता है, आता है, जाता है, जानता है, आता है, होता है, जानता है, बस जानता जानता है और कुछ नहीं है। द्रव्य को भी जाने न पर्याय को भी जाने, जान ना रहे भैया।
प्रवचन में एक बात ये आई थी कि ध्येय को प्रसिद्ध करके उत्पाद होता है और ध्येय को ही प्रसिद्ध करके व्यय होता है।
बराबर ऐसा ही है।
तो इसमें प्रश्न है कि जब पर्याय का अभाव ही हो गया तो वो ध्येय को प्रसिद्ध कैसे करती है?
वो व्यय हुआ ने, तो व्यय हुआ तो मगर उसको प्रसिद्ध करके ही होती है। उत्पाद में ध्रुव को प्रसिद्ध किया, करने के बाद ही व्यय होती है, प्रसिद्ध किए बिना व्यय नहीं होती है। ऐसा उपयोग लक्षण है, ऐसा प्रक्रिया अनादि चालू है, फंक्शन चालू है। उपयोग में भगवान ध्रुव परमात्मा समय समय पर जानने में आता है, स्वीकार नहीं करता है, वो उसकी भूल है।
तो ये अज्ञानी को भी ये बात लागू होती है?
अज्ञानी को लागू पड़ती है। अज्ञानी स्वीकार करे तो ज्ञानी बन जावे, वो स्थिति है। बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। निगोदिया जीव में भी गायक गाने में आता अनुभव।
लेकिन ये कैसे हो सकता है कि निगोदिया को भी गायक जानने में आता है?
हाँ, जरूर प्रतिभास होता है, उसके अंदर सफर प्रकाश की व्यक्ति है। 85 का शास्त्र
जी,
121 गाथा, उसमें आचार्य भगवान ने लक्षण किया है कि सब जीव को, एक इंद्री, बे इंद्री, तण इंद्री, चार इंद्री, भवी अभवी सबको एक स्वपर प्रकाशक की ज्ञप्ति है, ज्ञप्ति यानी ज्ञान की पर्याय की स्वच्छता है, उसमें स्वपर दो ही प्रतिभास होता है। दो का प्रतिभास होने से बंधमोक्ष की सिद्धि होती है, दो का प्रतिभास होता है उसमें बंधमोक्ष की, पर का प्रतिभास को उपयोगात्मक करता है तो आश्रम की उत्पत्ति होती है, और स्व का प्रतिभास को उपयोगात्मक करे, उसको गौण करे और उसके अंदर आए तो समय प्रकट हो जाता है।
इस दो का प्रतिभास में बंधमोक्ष की प्रसिद्धि होती है ऐसा आपने फरमाया,
बराबर।
तो ये दो का प्रतिभास उपयोग में होता है,
उपयोग में चालू, लब्ध की बात नहीं है, सबकी बात उपयोग लक्षण है कि तत्व सूत्र में,
हाँ जी
वो उपयोग की बात है।
उपयोग में भगवान आत्मा जानने में आता है,
आता है
तो सदुपयोग क्या होगा तब? तो फिर
नहीं, सदुपयोग नहीं हुआ, मैंने कहा ना कि वो प्रतिभास को नहीं पकड़ता है, देह का प्रतिभास को पकड़ता है, देह पर लक्ष्य करता है तो देह में अहमबुद्धि करता है, उसका प्रतिभास को छोड़ दिया ना, उसका प्रतिभास को स्वीकार कर लिया। प्रतिभास दो का है, ज्ञप्ति है, स्वपर प्रकाशक की ज्ञप्ति है।
आत्मानुभव की प्रक्रिया आदि से अंत तक कैसी होती है, कृपया स्पष्ट करें।
वेद ज्ञान से होती है, पुण्य पाप से मेरा आत्मा भी है और अनंत गुण से मैं अभिन्न हूं, और वही जानने में आता है मेरे को, पुण्य पाप का लक्ष्य छोड़े और आत्मा का लक्ष्य करे तो अनुभव हो जाता है। पुण्य पाप नहीं छोड़ना, पुण्य पाप का लक्ष्य छूटता है पर्याय का, पर्याय से चक्षु बंद हो जाती है।
एक बात, ध्येय और ज्ञेय का एक समय है ऐसा आपने फरमाया,
बराबर।
तो क्या इसमें आप ऐसा कहना चाहते हैं कि निर्विकल्प नए और निर्विकल्प प्रमाण दोनों अनुभव के समय एक साथ होते हैं?
एक साथ होते हैं, नई पूर्व प्रमाण होता है,
तो नए
नहीं, पहले समय में प्रमाण दूसरे समय में, ऐसा नहीं है। एक ज्ञान की पर्याय का पंचाध्याय कर्ता ने कहा कि उसका विषय भेद से नाम भेद पड़ जाता है, ज्ञान की पर्याय तो एक है, विषय भेद से नाम भेद पड़ जाता है।
एक समय में ही विषय भेद रहता है?
हाँ, विषय भेद अपेक्षा करता है, अंदर में कहाँ है विषय भेद, वो समझने के लिए जो ज्ञान की पर्याय का विषय सामान्य है उसका नाम निश्चय, और वो आनंद को जानता है तो व्यवहार, और दो को जानता है तो प्रमाण, ऐसा तीन विकल्प नहीं है, समझाया जाता है। सैकड़ों प्रश्न आ गया, सैकड़ों प्रश्न, अभी प्रश्न नहीं भेजना ऐसा बार जिज्ञासा है ना सबको,
हाँ जी।
अच्छी बात है।
आत्मा में स्यादवाद का अभाव है ऐसा आपने प्रवचन में कहा था,
बराबर,
परंतु हमें एक गुण में दूसरे गुण का अभाव है, अतः आत्मा में ज्ञान गुण का अभाव तथा एक का दूसरे में रूप है तो आत्मा में स्यादवाद का अभाव कैसे होगा?
स्यादवाद का अभाव है तो भी निश्चयाभासपना आता नहीं है, ऐसा देवसेन आचार्य भगवान का नए चक्र के अंदर पाठ है। उसका क्या अर्थ हो कि आत्मा शुद्ध ही है, कथन की शुद्ध ने कथन की अशुद्ध ऐसा नहीं है आत्मा मत्याद्वाद। क्या कहा कि आत्मा शुद्ध ही है, कथन चित शुद्ध ने कथन चित अशुद्ध ये आत्मा में लागू नहीं पड़ता है, वो प्रमाण ज्ञान का विषय हो गया, महिलाई शामिल हो गई,
प्रमाण का विषय भी तो आत्मा ही है ना।
हाँ, पहले प्रमाण नहीं होता है, पहले नहीं होता है, नहीं पूर्वक प्रमाण होता है, पहले प्रमाण में आवे ऐसा विकल्प में, बाद में निर्विकल्प होता है तब नई की उत्पत्ति होती है, मगर नई पूर्वक प्रमाण होता है, बाद में प्रमाण पूर्वक नई का व्यापार चालू होता है।
कभी आप फरमाते हैं कि नये और प्रमाण एक साथ होता है, कभी फरमाते हैं कि पहले नये होता है फिर प्रमाण होता है, थोड़ा विशेष खुलासा करने की कृपा करें।
ऐसा है कि पहले स्वविकल्प प्रमाण के अंदर आया, पर से भिन्न पड़ गया कि मेरा आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है, आत्मा भी चेतन अने परिणाम में भी चेतना होती है, तो प्रमाण में आ गया, राग से भिन्न पड़ गया, ख्याल रखना, राग प्रमाण ज्ञान में अंदर में नहीं आता है, वो आगम प्रमाण में जाने दो, अभी जिसको राग चाहिए उसको खाता में डालो, अपने को तो राग अभी चाहिए नहीं, ठीक है। तो आत्मा चेतन अने पर्याय में उसका उपयोग लक्षण चेतना तो प्रमाण में आ गया। अभी स्वविकल प्रमाण, उसमें भेद ध्यान करना कि मैं सामान्य हूं न विशेष नहीं हूं, क्योंकि सामान्य नित्य ध्रुव परमात्मा हूं, अनुगुणात्मक अने पर्याय एक समय के पर्याय है और नाशवान है, इसलिए मेरा स्वभाव में उसका अभाव है। ऐसा स्वभाव का लक्ष्य करने से आत्मा का अनुभव होता है। तो वो नहीं हुआ, नहीं से उपाधि तत्व है ना, नहीं में प्रमाण में तो है उपाधि होता है, नहीं में तो शुद्ध नहीं में उपाधि तत्व आता है, शुद्ध नहीं का विषय। तो अनुभव हुआ तो आनंद आया, तो प्रमाण हो गया कि नहीं? प्रमाण को भी जाना ने ज्ञान ने, द्रव्य को जाना ने पर्याय को भी जाना, सम्यक दर्शन की खबर केवी रीते पड़े? आनंद की खबर पड़े छे। निर्विकल ध्यान माथी बार आयो, सम्यक दर्शन थयो, खबर केम पड़े? आनंद आयो एनाथी, तो आनंद एने जाण्यो के नहीं? निर्विकल ध्यान में जाणवू आवी जाय छे।
तो इसलिए पहले सविकल प्रमाण होता है, पीछे नय होता है।
सर्वात्मा प्रमाण नहीं, निक्षेप से समझाया जाता है, मगर अनुभव के काल में प्रमाण भी नहीं है, नय अस्त हो जाती है, निक्षेप कहाँ चले जाता है मालूम होता नहीं है। समझाने के लिए माध्यम है प्रमाण नहीं, निक्षेप से समझाया जाता है। तो शुरुआत में ऐसा ही होता है, मगर जो अंदर जाता है तो प्रमाण का विकल्प, नहीं का विकल्प, निश्चय का विकल्प नहीं होता है, वस्तु नहीं आती थे।
अभी एक प्रश्न के उत्तर में आपने फरमाया कि निर्विकल्प नय और निर्विकल्प प्रमाण दोनों अनुभव के काल में उत्पन्न
होता है बराबर।
और अभी कहते हैं कि प्रमाण नहीं होता है, नय कहाँ चला जाता है मालूम नहीं पड़ता।
सर्वात्मा अनुभव के पहले की बात, अभ्यास करे तब की बात है। अभ्यास होता है ना शुरुआत में, तो प्रमाण से मेरा क्या स्वरूप है, नई से मेरा क्या स्वरूप है, समझे
जी?
ऐसा आता है शुरुआत में। प्रमाण में द्रव्य पर्याय दो स्वरूप है, मैं नई एक में गौण, एक में मुख्य, एक है ही उपाधि, तो नई का व्यापार है। विधि निषेध नई में होती है, प्रमाण में विधि निषेध नहीं होती।
बराबर। प्रवचन साल में आता है कि आत्मा में ये इस प्रकार समा जाते हैं कि मानो उसमें कीलित हो गए हों, डूब गए हों,
डूब गए हो,
टंकोत्कीर्ण हो गए हों,
बराबर है।
और आप फरमाते हैं कि आत्मा ये को नहीं जानता,
यानी ये का लक्ष्य नहीं रहता है, ये को नहीं जानता है, यानी ये का लक्ष्य छूट जाता है। ये तो रहता है, ये का प्रतिभाग भी अंदर रहता है।
तो अगर आप ऐसा कहें कि गेय का लक्ष्य किए बिना ही गेय को जानता है,
हाँ,
तो समस्या समाधान हो जाएगी, क्योंकि आप तो कहते गेय को जानते ही नहीं है।
गेय का लक्ष्य बिना गेय जानने में आता है केवल भगवान को।
हाँ जी।
और शुद्ध ज्ञानी जो है अविरत सम्यक दृष्टि, उसको भी राग जानने में आता है, मगर राग का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य एक पर रहता है, लक्ष्य दो पर नहीं रहता है।
ये तो दो की बात हुई, केवली की और श्रुत ज्ञानी की।
हाँ, एक ही बात है, उसका ही लक्ष्य आत्मा पर है, अज्ञानी का अरण्या का लक्ष्य भी आत्मा पर है।
तो अज्ञानी
का पाठ एक,
हाँ जी
अभय कुमार
फरमाइए
कि एक जयचंद आचार्य भगवान का समय सार है, उसका एक निर्जरा अधिकार है। तो मुनिराज जब आहार लेते हैं, पानी भी लेते हैं आहार के टाइम में, और उसके अंदर पुण्य का भाव भी होता है, निचली भूमिका में पापी होता है, उसने चार भाव लेकर उसने कहा, दर्पण में आए हुए प्रतिभास के समान जानते हैं, प्रतिबिंब के समान जानते हैं, यानी आहार पर लक्ष्य नहीं है, मगर आहार को जानता है, जानता हो तो भी नहीं जानता है, देखे भी नहीं देखे, देखे पर नहीं देख तो बोले छता नहीं, बोल तो चाले छता नहीं, चाल तो तत्व स्थित अडोल। ये इंद्रिय ज्ञान से जो तपास करते हैं ना, वो मालूम नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान यही है, ज्ञान ही नहीं है।
इसका नाम इंद्रिय ज्ञान तो है ना साहब,
मोह राजा ने कहा है, सर्वज्ञ भगवान ने यही रखा है।
तो इंद्रिय ज्ञान
नाम निक्षेप है, भाव निक्षेप नहीं है उसमें, आत्मा जानने में नहीं आता, अनुभव में नहीं आता है।
इंद्रिय ज्ञान आत्मा की पर्याय है कि पुद्गल की पर्याय?
मूर्ति है ऐसा प्रवचनकार में लिखा, अने अमित गति आचार्य ने पौद्गलिक कहा, और प्रवचनकार ने कहा कि इंद्रिय ज्ञान बंध का कारण है, और पंचाध्याय कर्ता ने लिखा कि इंद्रिय ज्ञान है, जूना कर्म का कार्य है, अने नवा कर्म बंध का कारण है। सब शास्त्र का आधार देता हूं मैं।
हाँ जी,
प्रवृत्ति सार में लिखा है कि पौद्गलिक है, 58 गाथा है, 58 गाथा, सुख भी मूर्तिक संसारिक, ज्ञान भी मूर्तिक, और अचेतन है, स्वपर को नहीं जानता है, इसके लिए तो बहुत न्याय भी है, मगर इंद्रिय ज्ञान का विषय निषेध करने के लिए बहुत कम है शास्त्र में।
मोक्षमार्ग प्रकाशक में तो टोडरमल जी ने लिखा है कि जो अज्ञानी को भी जो ज्ञान की धारा चलती है वो स्वभाव का अंश है,
वो अलग बात है,
बंध का कारण नहीं है,
वो उपयोग है, बंध मोक्ष का कारण नहीं है, बंध का ही कारण नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है, स्वभाव का अंश है, बराबर है। मगर जो इंद्रिय ज्ञान की उपाधि गौण कर लो तो उपयोग है, इंद्रिय ज्ञान की जो उपाधि उस पर गौण कर लो तो उपयोग ही रह गया बस।
उपयोग में और इंद्रिय ज्ञान में क्या अंतर है? उपयोग ही तो इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमित होता है।
पर उपयोग का दुरुपयोग हुआ, कल कहा था।
हाँ जी,
उपयोग का दुरुपयोग उसका नाम इंद्रिय ज्ञान, है उपयोग का सदुपयोग उसका नाम
अतिंद्रिय
ज्ञान, स्वभाव का उसे बराबर है।
एक सामान्य का ज्ञान करना चाहिए, पर्याय का लक्ष्य छोड़ना चाहिए, तब ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान का विषय 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 क्या है दिखाई देता है। अगर उसको भी गौण करके ज्ञान जानन रूप भाषित होता है, क्या वही द्रव्य भाव या कुछ और है? अगर और तो कैसा कैसे अनुभव में आवे? क्लियर नहीं है।
इंद्रिय ज्ञान जो पर को प्रसिद्ध करती है ना, अभी इंद्रिय ज्ञान को समेट करके मर्यादा में लाकर उपयोग को अभिमुख करो, मति ज्ञान सन्मुख करो, बाद में शुद्ध ज्ञान को सन्मुख करो, तो आत्मा का अनुभव हो जाता है, ऐसा कर्ता कर्म अधिकार में लिखा है।
बराबर। अभी केवली भगवान की बात आई थी कि वो लोकालोक को व्यवहार को व्यवहार से जानते हैं,
जानते हैं बराबर,
परंतु केवली केवल ज्ञान को तो नए होते ही नहीं है, तो वहाँ व्यवहार नहीं, कैसे लागू करेगा?
नीचे का जीव नहीं लगाता है, वहाँ नहीं नहीं है।
अच्छा,
नीचे का जीव नहीं लगाड़ कर समझने का कोशिश करता है,
मतलब श्रुत ज्ञानी जो है श्रुत ज्ञान में प्रकट होने वाले नयों के द्वारा केवल ज्ञानी की इस बात को जानता है कि वो लोकालोक को व्यवहार से जानता
है, ऐसा साधक नहीं लगाड़ कर समझाता है, ऐसा नियम सार में आया है
जी,
कि कोई तत्व ज्ञानी अनुभवी ऐसा कहे कि केवड़ी भगवान लोकालोक को जानते नहीं है तो क्या दोष है? कुंडकुंड आचार्य भगवान ने लिखा कि कोई तत्व ज्ञानी अनुभवी ऐसे कहे कि हमेरे केवड़ी भगवान लोकालोक को नहीं जानता है तो क्या दोष है? कि कुछ दोष नहीं है, क्योंकि वो निश्चय नहीं का कथन हो गया। और बाद में एक गाथा लिखी कि हमारा केवड़ी भगवान आत्मा खेला क्यों खेला था, जुआ खेलने का भाव पहले तो पापी है, उसको आगल मत करो, कोई अपवाद रूप बनाव बन गया हो तो इसके आगे नहीं करना चाहिए, वो पाप का परिणाम है। ऐसा कलकत्ता में ऐसा बनाव भी बन गया था थोड़ा, गुरुदेव ने वो बात मेरे को कहा था कि धर्म धर्म राजा जुगाड़ भी खेलते थे, पर समय दर्शन गया नहीं, बोलो उसको आगल करने जैसी चीज नहीं है, पाप का परिणाम को आगल नहीं करना चाहिए, कोई भी पाप का परिणाम।
पूछने वाला क्या चाहता है? पूछने चाहता है क्या? पूछने वाला पूछ लेना चाहता है क्या?
वो तो वो जाने, मैं नहीं कह सकता।
सिद्ध भगवान के सुख के संबंध में एक प्रश्न है, क्या सिद्ध अवस्था प्रारंभ होने के बाद प्रत्येक समय आगे बढ़ने पर
अनंत आनंद की अनुभूति अनंत गुणी होती है, सिद्धों के सुख में भी अनंत गुणी
बढ़ता नहीं है, बढ़ता नहीं है। आनंद प्रकट हो गया 100%, उसमें शुद्धि की वृद्धि अनंत की वृद्धि नहीं होती है। साधक के अंदर आनंद की वृद्धि होती है, मगर पूर्ण होता है कृत्य कृत्य, सब कषाय का अभाव हो गया, पूर्ण वितराग हो गया।
श्रद्धा के संबंध में एक प्रश्न है कि आत्मा में पर्याय से भिन्न द्रव्य का श्रद्धा ही सम्यक दर्शन कहा है,
बराबर,
जबकि तत्वासूत्र में सात तत्वों के श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है,
बराबर,
परंतु ये तो पर्याय रूप है और समय सार में अभूतार्थ कहा है, अतः इसका अभेद रूप श्रद्धांत सम्यक दर्शन कैसे होता है, जबकि सामान्य जीव तत्व तो भिन्न है। कृपया स्पष्ट करें जो असल में सात तत्व का सिद्धांत सम्यक क्यों, जो अकेले पर्याय से भिन्न आत्मा का सिद्धांत सम्यक क्यों।
देखो पहले तो पर्याय से भिन्न आत्मा का सिद्धांत सम्यक दर्शन है
जी।
दूसरी बात के जो तत्वार सूत्र में आया है सात तत्व का सिद्धांत और सम्यक दर्शन है बराबर है, क्योंकि उसमें एक वचन लगाया है बाद में, तो एक वचन में उसके अंदर शुद्धात्मा गर्भित है और दृष्टि में आ जाता है, तो सम्यक दर्शन का जो निमित्त कारण है सात तत्व नौ पदार्थ, वो निमित्त की प्रधानता से ऐसा कहा जाता है कि सात तत्व का श्रद्धा सम्यक दर्शन, मगर उसमें और समय सार में तत्वार सूत्र में कोई विरोध नहीं है, आत्मा का ही अनुभव उसमें होता है। दूसरा एक बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट बताता हूँ आपको कि आपने तो तत्वासूत्र के साथ वो बात बताया, मगर समय सार में ग्यारहवीं गाथा में तो ऐसा है कि भूतार्थ नहीं से जानो आत्मा को, व्यवहार नहीं सगरो अभूतार्थ है, भूतार्थ में आश्रय समय दर्शन हो जाता है ग्यारहवीं गाथा है ने, तो वो तो त्रिकाली द्रव्य का आश्रय से समय दर्शन होता है, पर्याय से भिन्न व्यवहार अभूतार्थ यानी पर्याय है मगर पर्याय द्रव्य में नहीं है, ऐसे गुण नहीं करना कि पर्याय को उड़ा देता है ज्ञानी, पर्याय द्रव्य में नहीं है, सामान्य में विशेष की नाप्ति है, इसकी अस्थि है, इसका लक्ष्य करने से अनुभव होता है, वहां तो त्रिकाली द्रव्य का आश्रय से अनुभव करने की बात है ना, सम्यक दर्शन
जी।
एक बात और तेरहवीं गाथा में तो कहा कि भूतार्थ नहीं से नौ तत्व जाना हुआ सम्यक है, तो नौ तत्व तो व्यवहार नहीं का विषय है, नव तत्व जो भेद है पर्याय का वो तो व्यवहार का विषय है, तो क्या उसका आश्रय करने का बोध है नहीं, आगल लगाया है भूतार्थ नहीं से, भूतार्थ नहीं से अर्थ क्या है कि अभूतार्थ नहीं से तो सब नव तत्व को जानता है तो मिथ्या तो है, अभूतार्थ नहीं से नव तत्व को जानता है यानी आत्मा मंद का ही करता है, मोक्ष मार्ग का ही करता है, मोक्ष का करता है, अभूतार्थ नहीं का कथन है, भूतार्थ नहीं से तो नौ जो तत्व है वो निरपेक्ष है, आत्मा उपादान पड़े भी करता नहीं है न निमित्त करता भी
नहीं
नहीं है, वो स्वयं एक समय की पर्याय हेतु क्षणिक उपादान है, और अकाउंट में नियम लिखा है भूतार्थ नहीं से नौ तत्व जाना हुआ सम्यक दर्शन है, ऐसा फुलचंद सिद्धांत शास्त्री को हमने पूछा था गोहोटी में, जब गुरुदेव गोहोटी में गए तब मैं गया था, तब पंडित जी को पूछा कि पंडित जी ये भूतार्थ नहीं से नव तत्व जाना हुआ सम्यक है, ऐसा कोई अलग जगह तो आता नहीं है, एक जगह पर है तेरहवीं गाथा में, हाथों की बात सच्ची है एक ही जगह पर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो, उसमें ग्यारहवीं गाथा में पर्याय से भिन्न का द्रव्य को अवलंबन कर और पर्याय सब है तो कह तू करता नहीं है करता है ऐसे होकर समय दर्शन हो जाता है, अभूतार्थ नहीं से तो अनंत काल से जाना कि आत्मा पुण्य पाप का करता है, आत्मा आश्रम का करता है, संवर का करता है, निद्रा का करता है, मन का करता है, मोक्ष का करता है, वो अभूतार्थ व्यवहार का कथन है, पर्याय का करता आत्मा है ही नहीं, निश्चय नहीं चलो पर्याय का कर्ता पर्याय है सत हेतु, ऐसे जो जाने पर्याय को सत हेतु तो कर्ता बुद्धि छूट जाती है और कर्ता बुद्धि छूटने से अकर्ता पर दृष्टि आती अनुभव हो जाता है, तो नव तत्व को जाना हुआ सम्यक दर्शन कहा जाता है।
सम्यक दर्शन फिर ग्यारहवीं गाथा के हिसाब से होगा कि तेरहवीं गाथा के हिसाब से होगा कि दोनों के हिसाब से,
आत्मा के आश्रय से होगा,
दोनों गाथाओं में अलग अलग बात कही और दोनों
अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं, आत्मा का ही आश्रय आया,
नव को सब जाना तो वहां ठेरता नहीं है, होने होता है तो मैं करने वाला नहीं हूं, मैं करता गायक हूं। एक ही गायक में दृष्टि आ गई।
दृष्टि का विषय अखंड है, वह अखंड द्रव्य गुण पर्याय का समूह आत्मा अभेद होने से अखंड होगा। मात्र ध्रुव स्वभाव तो वस्तु का एक अंश है, उसको दृष्टि का विषय कहा गया है, तो फिर दृष्टि का विषय अखंड कैसे हुआ? तो खंड हो गया।
अनंत ध्रुव से अखंड है अभेद, वो दृष्टि का विषय है, उसमें पर्याय शामिल नहीं होती है। ध्रुव ध्रुव अखंड, वो भी अखंड है। अनंत गुण से अभेद अखंड है, इसमें गुण भेद नहीं है, इसमें खंड का नहीं है, अखंड है। और जब ज्ञ होता है तब पर्याय से अनन्य होता है, वो भी अखंड हो गया। तो परिशिष्ट में अखंड क्यों हो गया, क्या किया? अखंड की दो व्याख्या आती है, एक पर्याय से रहित अनंत गुणात्मक अखंड ध्रुव परमात्मा, इसका आश्रय करो, और एक पर्याय से अभेद हुआ, वो भी अखंड है।
जैसे अनंत गुणों से अखंड है, वैसे अनंत पर्यायों से भी तो अखंड है, तो फिर उसको क्यों
पदार्थ है? वो पदार्थ की स्थिति में भूल पर्याय वह द्रव्यम, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, परस्पर सापेक्ष पदार्थ, उसको पदार्थ की स्थिति होती है, मगर प्रयोजन की स्थिति इसमें नहीं होती है। पंडित बनता है मगर ज्ञानी बनता नहीं है। पंडित की टीका नहीं मैं करता हूँ, कोई पंडित की टीका की बात, टीका की बात इधर है ही नहीं, मना है सखत। मगर वो द्रव्य गुण पर्याय उत्पादित रूपम सब जो पदार्थ है, पदार्थ की सिद्धि वो पर पदार्थ से जुदा पाता है, नहीं अपने पर्याय से जुदा पार कर त्रिकारी द्रव्य का अवलंबन लेती
है। द्रव्य शुद्ध निर्मल अविकारी है, तो इसमें से जो पर्याय निकलती है वो अशुद्ध कैसे होती है? शुद्ध द्रव्य में से अशुद्ध पर्याय कैसे निकलती
है? शुद्ध द्रव्य में से अशुद्ध पर्याय निकलती ही नहीं है। पहले तो शुद्ध में से अशुद्ध निकलती ही नहीं है। जब पर्याय निकलती है सब उसका मुख स्वतरफ है कि परतरफ? जब परतरफ है तो अशुद्ध बन जाती है, स्वतरफ और मुख तो शुद्ध रहती है।
पर्याय के निकलने के बाद में फिर वो स्व की या
पर्याय एक ही समय में, समय एक है उसमें, पहले समय में शुद्ध निकले, बीजा समय अशुद्ध निकले, ऐसे नहीं। पर्याय का उत्पाद है उसका मुख, उत्पाद के समय स्वतंत्र होता है तो प्रथम मुख, बस इसके पर शुद्ध अशुद्ध का आधार है। शुद्ध अशुद्ध भी उपाधि है, उत्पाद तो स्वभाव है पर्याय का।
ध्रुव सामान्य में उत्पाद और ध्रुव ये तीनों बनेंगे क्या?
सामान्य में नहीं, सामान्य में तो इतना गुण है, सामान्य विशेष तो उत्पाद ध्रुवतम सत्ता गया, सामान्य विशेष तो।
एक भाई ने पूछा है कि साधक अर्थात तो मिथ्यात्व की भूमिका में ऐसा कौन सा व्यवहार उचित है जो सम्यक दर्शन में सहायक हो?
वेद ज्ञान शुभ भाव करना सहायक नहीं है, वो तो मिथ्या तो दृढ़ हो जाता है।
वेद ज्ञान तो निश्चय की बात है,
निश्चय की बात ही सच्ची है, निश्चय की बात सच्ची है। पूर्व भूमिका बताया ना, पात्रता
बराबर,
सम्यक दर्शन के लिए पात्र कौन है? भोक्षा प्रकाश में लिखा है कि बारंबार तत्व का विचार करे यानी वेद ज्ञान करे वो व्यवहार है। वेद ज्ञान का जो विचार है ना वो व्यवहार है। ये मैं स्व हूं ये मैं पर नहीं हूं, विधि निषेध का विकल्प आया ना, मैं ऐसा हूं ऐसा नहीं हूं, मैं शुद्ध हूं ना शुद्ध नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं ना कर्ता नहीं हूं, दो के बीच में वेद ज्ञान का विचार आया ना, उसमें मिथ्या को गलता है। और शुभ भाव करने से मिथ्या को बढ़ जाता है, लोग को प्रिय लगता है शुभ भाव। हाँ ये ठीक है, शुभ भाव को करना चाहिए, उसमें पात्रता है अपात्रता है। शुभ भाव से पुण्य बनता है जरूर, मगर साथ साथ में कर्ता बुद्धि है, इसलिए मिथ्या तो दृढ़ हो जाता है। भेद ज्ञान नहीं उसमें, कर्ता मत क्या भेद ज्ञान रहा, शुभ भाव करने जैसा है ऐसा जो अभिप्राय है वो तो अज्ञान है, अप्रतिमुख का लक्षण है,
बराबर
भेद ज्ञान है। शुभ भाव आता है जरूर। एक प्रश्न आया गुरुदेव के पास, जैसा आप फरमाते हैं कि आत्मा का अनुभव से चंद्र दर्शन धर्म की शुरुआत होती है, वहां तक तो हमें पहुंचते नहीं, अनुभव तक तो हमें पहुंचते नहीं, और पाप तो करना नहीं है हमको, बाकी बचा पुण्य, तो पुण्य भाव करना कि नहीं करना, करना कि नहीं करना, तो उसमें दो में एक उत्तर आएगा, ऐसा प्रश्नकार का विचार था, मगर दो में एक ही जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दिया? कि जब पुण्य भाव आवे शुभ भाव, तो उससे आत्मा भी नहीं जुड़ा है, ऐसा बार बार विचार करना, पुण्य करना ऐसा ही नहीं कहा, नहीं करना ऐसा भी नहीं करना के है खाल बिल्कुल, क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसका कार्यक्रम में शुभ भाव आता है, करने की बात नहीं है, नहीं करने की बात नहीं है, उसका कार्यक्रम में आ रहे, नहीं करना क्या, नहीं करना होगी कर्ता बुद्धि में, करता होगी कर्ता बुद्धि है, आता है उससे आत्मा भी नहीं, ऐसा बार बार विचार करना भेद ज्ञान का विचार वो पूर्व भूमिका है, पात्रता संदर्भ दर्शन की पात्रता वो है,
जो आता ही है तो फिर करना ऐसा कहने में क्या दिक्कत है, आएगा तो फिर करना ऐसा कहने में क्या दिक्कत है,
मिथ्या तो दर्द हो जाता है, एक तो बुद्धि हो जाता है, उसका स्वामी बन जाता है, स्वस्वामी संबंध बन गया, ममत्व हो गया, शुभ भाव से वितराग मार्ग में ममत्व करने की मनाही है, सखत
मनाई। आप कहते हैं कि शुभ भाव से मिथ्या दृढ़ हो जाता है,
कर्ता बुद्धि से मिथ्या शुभ भाव से नहीं, शुभ भाव तो पांच महावर का परिणाम सबको आता है, ज्ञानी को
ये यही पूछना
था, शुभ भाव मिथ्या तो नहीं है भैया, तो गर्म होगी तो साधक को भी शुभ भाव होता है, मतलब शुभ भाव में ममत्व एकत्व कर्तृत्व वो मिथ्या तो है भैया।
जीवन में चरणानि योग और द्रव्यानि योग का सुमेल किस प्रकार होना चाहिए?
वेद ज्ञान से हो जाता है, वेद ज्ञान के सुमेल हो जाता है, सुमेल करना हो तो वेद ज्ञान करो, ध्यान के बिना आत्मा को जानो, बस द्रव्यानि योग चरणानि योग या समय दर्शन का आचरण और चरणानि योग है, स्वरूपाचरण चारित्र भी आचरण चारित्र है, ऐसा आ जाता है।
वेद ज्ञान और सम्यक दर्शन ये सब बातें तो द्रव्यानि योग की हुई, चरणानि योग का क्या है?
चरणानि योग का है जैसा भाव आता है उसको जानना, स्थिति अनुसार जो स्वभाव स्वभाव है उसको जानना, बस जानना और चरणानि योग है, स्वभाव करने का चरणानि योग में नहीं है, परस्पर विरोध बात होती नहीं है जिनागम में,
बराबर।
हाँ कोई ऐसा जीव पाप के पर चढ़ गया हो तो उपदेश बोध में करे कि पाप छोड़ मैंने पुण्य कर, ऐसा कहे कोई दूसरी जगह पर जाता है मंदिर में दर्शन करे भगवान का दर्शन कर तेरे को धर्म होगा, भगवान का दर्शन इधर महावीर भगवान है ना उसका दर्शन तेरे को धर्म होगा, उपदेश का कथन तो बहुत है भैया क्या करे,
बोला
टाइम हो गया कि नहीं, चार हो गया, पांच हो गया, बस
पांच हो गया,
बोलो परोपकारी श्री सद्गुरुदेव।
Thank you. है।